ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी
मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य
शास्त्रों में गृहस्थ जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा ग्रह मेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए दिव्य जीवन बिताते हैं, किंतु ग्रह मेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे उदार भाव से रहे या केंद्रित होकर रहे, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। ग्रह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं, अतएव एक ग्रह मेधी का दूसरे ग्रह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता। व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के परम कष्टों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन का जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण ग्रह मेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश तथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते, वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। वे ये नहीं जानते कि सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए इस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही है, अतएव परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ गलत साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए ग्रह मेधी ना बने, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा प्रदामेयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। श्रीमद् भागवतम का एक अध्याय है, इस अध्याय में शुक्रदेव गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोनों के लिए, एक तो जो वैष्णव है और जो वैष्णव बनना चाहता है। तो वैष्णव कौन है, सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में वर्णन करते हैं कि वैष्णव उसे कहते हैं जो वास्तव में विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित है, जिसने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया है परंपरा के माध्यम से, और जो गुरु की आज्ञा में कृष्ण की सेवा में निरंतर बिना किसी भौतिक हेतु के लगा हुआ है, उसे वास्तव में वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव बनना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन है। हम अपने आप को समझ रहे होंगे हाँ कि मैंने तिलक लगा दिया, धोती कुर्ता पहन लिया, या फिर कंठी माला डाली, थोड़ा सा हरि नाम शुरू कर दिया, मैं वैष्णव बन गया। लेकिन नहीं, हम तो वैष्णव के जैसे हैं, वैष्णव प्राय हैं, लेकिन वैष्णव बनने के लिए है हमें क्या करना होगा, हाँ इस श्रीमद् भागवतम की जो शिक्षा है उसको गंभीरता से लेना होगा। इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवतम का जो दिव्य उपदेश है वो प्रदान करते हैं। तो दोनों के लिए है। कृष्ण कथा की तुलना जिस प्रकार से गंगा से की है, पिछले श्लोक में आपने सुना होगा कि गंगा जिस प्रकार से त्रिभुवन को पावन करती है, शुद्ध करती है, जब वो स्वर्ग में होती है तो मंदाकिनी के रूप में वहां सबको पवित्र करती है, और वही गंगा जब इस भूलोक में आती है तो जाह्नवी या गंगा आदि नाम धारण करती है तो पूरे भूलोक को पवित्र करती है, और वही जब पाताल में गंगा जाती है तो भोगवती के नाम से अन्य जो सारे लोग आदि है नीचे के उनको शुद्ध करती है। तो उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवतम की चर्चा है, कृष्ण का जो दिव्य गुणगान है, वो तीनों लोगों तीन प्रकार की व्यक्तियों को शुद्ध करता है। एक तो जो वक्ता है और दूसरा जो श्रोता है और जो जिज्ञासु है, तो ये तीनों को भी ये जो कृष्ण कथा है, श्रीमद् भागवतम की चर्चा है, वो शुद्ध करता है। तो वास्तव में वैष्णव बनने के लिए हमें क्या करना होगा, शुक्रदेव गोस्वामी के ये जो शिक्षा है श्रीमद् भागवतम की, हाँ उसको सुनना होगा या समझना होगा। और इसलिए दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि जो ऑलरेडी जो वैष्णव है वो श्रीमद् भागवतम को सुनता नहीं है, श्रीमद् भागवतम को क्या करता है, पीता है। हाँ पिबत भागवतम, हाँ तो पिबत श्रीमद् भागवतम को पीता है, प्रविष्ट करना दंत्रेण अपने कानों के छेदों के द्वारा श्रीमद् भागवतम को पान करता है, और वह तृप्त नहीं होता, उसको और अधिक उसको पीना चाहता है, श्रवण करना चाहता है। हाँ ये तो उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति वैष्णव बन गया है, या जिसके हृदय में कृष्ण के लिए 100% आसक्ति जागृत हुई है। लेकिन हमारी स्थिति वो नहीं है, हमारे हृदय में नाना प्रकार की अनर्थ है, और इसलिए हमारे लिए श्रीमद् भागवतम एक मेडिसिन है। क्या एक मेडिसिन है, दवाई है। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम के गुरुदास ने कहते हैं, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अपद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। कि क्या करना होगा, इस श्रीमद् भागवतम का हर एक व्यक्ति को नियमित सेवन करना होगा। क्योंकि राजा परीक्षित वर्णन करते हैं दशम स्कंध के शुरुआत में ही कि ये क्या है, भव औषधि स्त्रोत्र मनोभिरामा, कि ये श्रीमद् भागवतम है शुक्रदेव गोस्वामी, आप निरंतर बोलते जा रहे हो, ये श्रीमद् भागवतम कैसा है, हाँ कान और मन को आनंद देने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये भव औषधि है, इस भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त होने के लिए जो सर्वोत्कृष्ट दवाई है वो श्रीमद् भागवतम है। तो इसी कारण से श्रीमद् भागवतम हमारे जैसे जीवों के लिए दवाई का काम है, दवाई का काम करता है। लेकिन इस दवाई को कैसे करना चाहिए, कभी कभी नहीं, कैसे पीना चाहिए, हर रोज नित्यम श्रीमद् भागवतम का पान करना चाहिए, पीना चाहिए, हाँ साधु गुरु और शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार। इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम वास्तव में शुक्रदेव गोस्वामी का हृदय है। शुक्रदेव गोस्वामी का हृदय परीक्षित महाराज के देखकर उनकी सरलता को, उनकी जिज्ञासा को, उनकी सिंसियरिटी को देखकर पिघल गया, और उनके मुख से श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत निकल आया। जिस प्रकार से गाय है वो बछड़े को देखती है, बछड़ा कितना उत्साहित होता है, अपनी माँ की ओर एक तक देखते रहता है और माँ के पास जाना चाहता है, हाँ उसकी उस अभिलाषा को देखकर गाय के स्तनों में अपने आप दूध निकलने लगता है। तो उसी प्रकार से जीव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए हमारे पास तीन प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता है। या जो श्रोता श्रीमद् भागवतम को इस योग्यताओं के साथ सुनता है तो कृष्ण उसके लिए रिवील हो जाते हैं, कृष्ण उनके हृदय में क्या होते हैं, बदलने लगते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय कि हे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के श्रवण का गुणगान करते हुए कहते हैं कि टाइम नहीं लगेगा, कालेन न अति दीर्घेन लंबा समय नहीं लगेगा, भगवान विशते हृदय उस व्यक्ति के हृदय में परम भगवान निवास करने लगेंगे। इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम को हमें सुनना चाहिए। किस प्रकार से परिप्रश्नेन सेवया, ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है उसको कोट करते हुए शुक्रदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के आखिरी में चर्चा करते हैं, वो कहते हैं सर्व वेदांत सारम हे श्रीमद् भागवतम इष्यते। ये श्रीमद् भागवतम क्या है, सारे वेद उपनिषद आदि का क्या है, पका हुआ फल है, सारे वेद उपनिषद आदि का ये सार है। तत्र सामृत तृप्तश्च नान्यत्र श्रद्धति क्वचित्। और कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के रसामृत के प्रति आसक्त हो गया है या उसमें जिसका मन लगा हुआ है, चित्त लगा हुआ है, वो किसी और रस के लिए लालायित नहीं होगा, क्योंकि हम भौतिक जगत में सुबह से शाम तक पागल की भांति अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए भाग रहे हैं। हमें अलग अलग शरीर हम क्यों धारण कर रहे हैं, ये जो 84 लाख योनियां अलग अलग शरीर क्यों है, क्योंकि जीव अलग अलग रसों को भोगना चाहता है, अलग अलग फ्लेवर का टेस्ट करना चाहता है। ह्यूमन फॉर्म उसके पास है तो एक डिफरेंट फ्लेवर को चखता है। अभी सुअर का शरीर है तो मनुष्य जीवन में उस फ्लेवर का टेस्ट नहीं ले सकता, हाँ तो क्या करेगा, सुअर के शरीर में उसका टेस्ट आस्वादन करेगा। तो इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग रसों को, अलग अलग भोगों को भोगना चाहते हैं, जिसके प्रति हम सदैव उत्साहित हैं, लालायित हैं और उसके लिए कार्यशील हैं। तो यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के प्रति आसक्त हो जाता है, श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य रसामृत को पीता है, तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं न अन्यत्र शाद्रति क्वचित्, उस व्यक्ति का आसक्ति, उस व्यक्ति का चित्त या गति या प्रेम या अटैचमेंट किसी और चीज के लिए नहीं भागेगा, वो श्रीमद् भागवतम के प्रति स्थिर हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है, कृष्ण से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम कोई बुक नहीं है, श्रीमद् भागवतम ये नहीं कि कभी कभी पढ़ा जाए और टाइम मिले तो उसको सुना जाए, नहीं, श्रीमद् भागवतम अपने पास होना, श्रीमद् भागवतम का स्पर्श करना, श्रीमद् भागवतम को घर में रखना, साक्षात किसको घर में स्थान देना, श्री कृष्ण को। इसलिए सूत्र गोस्वामी पहले अध्याय में कहते हैं कि कृष्ण सुधाम भगते धर्म ज्ञानादि सह, कि कृष्ण द्वापर युग के अंत में अपने धाम में चले गए। कैसे चले गए, अपने साथ उन्होंने सारी चीजें ले गए, धर्म ज्ञानादि सह अकलो नष्ट दृशामेश पुरानो अल्पो अधुनो उदितः, कि भगवान सूर्य के समान है, तो सूर्य जब अस्त होता है तो सब जगह अंधकार फैलता है, तो उसी प्रकार से कृष्ण ये जगत से अप्रकट हो जाते हैं, तो कलियुगा में अंधकार ही अंधकार फैल गया। तो जिस व्यक्ति को कलियुगा में प्रकाश चाहिए, टॉर्च लाइट की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या है, साक्षात श्रीमद् भागवतम है, जो कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाश्रय, कि ये जो भागवत कृष्ण के समान है। हाँ, कृष्ण की कौन समानता कर सकता है, हाँ कृष्ण के समान और कोई नहीं है, तो श्रीमद् भागवतम हाँ कृष्ण से अभिन्न है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थता है, इस श्रीमद् भागवतम का हर एक श्लोक हर एक अक्षर क्या है, दिव्य ज्ञान का भंडार है। इसलिए श्रीमद् भागवतम ये कोई छोटी सी वस्तु नहीं है, श्रीमद् भागवतम ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, श्रीमद् भागवतम ये एक केवल जो ग्रंथ है वो इनफ है इस जगत से हमें पार होने के लिए। और वास्तव में इस श्लोक का यही सार है, इस श्लोक में जो शुकदेव गोस्वामी जोर दे रहे हैं, और वास्तव में इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जो पक्का भौतिकतावादी व्यक्ति है उसके लक्षणों को वर्णन करते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को कोई व्यक्ति अपने जीवन में गंभीरता से लेता है तो सूत्र गोस्वामी कहते हैं अनर्थोष उपशमम साक्षात भक्ति योग अदोक्षजे, कि उस व्यक्ति के हृदय में जो अनर्था है, अनर्थ क्या है, जो अनावश्यक चीजें हैं, जो अर्थ नहीं है वो अनर्थ है। तो ये जो अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अदोक्षजे, तो जो हृदय में जो अनर्थ है, गंदगी है, छह प्रकार के जो शत्रु हैं, रिपु हैं, उनका जड़ से उन्मूलन करने के लिए क्या है, ये श्रीमद् भागवतम है। अनर्थ उपशमम साक्षात धर्म योग भक्ति योगम अदोक्षजे, लोक अशाजानतो विद्वान चक्रे सात्वत सम्यकः। तो ऐसे व्यास देव जो साक्षात कृष्ण के लिटररी इंकार्नेशन है, उन्होंने क्या किया, अनर्थों को हृदय से समूल नष्ट करने के लिए और कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की है। हाँ, हम दोनों चीजें चाहते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रति हमें अपना ये आसक्ति क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। और किस प्रकार से विकसित हो सकता है, जब हम इसकी सेवा करें श्रीमद् भागवतम की। कैसे सेवा की जा सकती है श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से श्रवण करना और श्रीमद् भागवतम के आधार पर गुरु और वैष्णव की सेवा में तत्पर होना, ये वास्तव में श्रीमद् भागवतम की सेवा है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के जीवन से हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी का जो प्रेम श्रीमद् भागवतम के लिए बहुत प्रगाढ़ था। भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं सनातन गोस्वामी के बारे में, वो कहते हैं श्री सनातनेर अति अद्भुत चरित श्रीमद् भागवते जार अतिशय प्रिय। कहते कि सनातन गोस्वामी को जरा देखो, सनातन गोस्वामी के जीवन को देखो, कि सनातन गोस्वामी के लिए, सनातन गोस्वामी के हृदय में श्रीमद् भागवतम के लिए बहुत प्रगाढ़ आसक्ति या प्रगाढ़ प्रेम था। प्रथम वयसे स्वप्ने एक विप्रवार श्रीमद् भागवत देह आनंद अंतर। तो ऐसे जब सनातन गोस्वामी एक बार सो रहे थे तो उस समय सनातन गोस्वामी के स्वप्न में एक ब्राह्मण आता है और वो ब्राह्मण आकर स्वप्न में क्या करता है, उनको श्रीमद् भागवतम की एक कॉपी, श्रीमद् भागवतम का एक ग्रंथ उनके हाथ में देता है। स्वप्न भंगे सनातन व्याकुल हैला प्राते से विप्र श्रीमद् भागवत दिला। तो जब सनातन गोस्वामी का स्वप्न भंग हुआ तो सनातन गोस्वामी उठ गए, उठकर जब बाहर गए अर्ली मॉर्निंग अपने घर के बाहर दरवाजे में, तो उन्होंने वही उसी ब्राह्मण को देखा जो ब्राह्मण उनके स्वप्न में आया था, वो कृष्ण से अभिन्न था। तो स्वयं कृष्ण उस ब्राह्मण के रूप में आकर सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का कॉपी देते हैं, श्रीमद् भागवतम को देते हैं और सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को प्राप्त करके बहुत अधिक हर्ष का अनुभव करते हैं। मग्न हैला प्रभु प्रेमामृत समुद्रे थे। तो सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को प्राप्त करके मग्न हो गए। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के प्रति अपने प्रेम को वर्णन करते हुए अपने ग्रंथ में लिखते हैं मत एक बंधु मत संगे मत गुरु मत महादना मत निस्तारक मत भाग्य मत आनंद नमस्तुते। कहते कि हे श्रीमद् भागवतम, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। मत एक बंधु मत संगी, मेरा कोई बंधु है तो वो कौन है, श्रीमद् भागवतम है। और इसी चीज के लिए तो हम कृष्ण भावना में लगे हैं कि हम एक जाने कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि कृष्ण मेरे असली माता है, कृष्ण मेरे असली पिता है, कृष्ण मेरे असली बंधु है, कृष्ण मेरे असली सखा है। तो इस चीज को अनुभव करने के लिए हम वास्तव में हम आध्यात्मिक जीवन में लगे हुए हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी कहते कि हे श्रीमद् भागवतम, आप मेरे एकमात्र बंधु हो, एकमात्र संगी हो, एकमात्र गुरु हो और आप मेरे असली धन हो। कभी हमें लगता है कि श्रीमद् भागवतम मेरा असली धन है, धन होता तो हम इसको कितना केयरफुली रखते हैं और बारंबार धन को हमेशा गिनते रहते हैं, कम तो नहीं हुआ, बढ़ा तो नहीं है कि नहीं। धन का हमेशा संग हम बनाए रखना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए कि क्या श्रीमद् भागवतम के प्रति जिस प्रकार से भौतिक धन के प्रति मेरा आसक्ति है, प्रेम है, लगाव है, व्यवहार है, क्या उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रति मेरा प्रेम आसक्ति और व्यवहार है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मत निस्तारक मत भागवत, हे भागवत आप मेरे एकमात्र निस्तारक हो, इस जगत से मुझे पार करने वाले हो, मत आनंद नमस्ते और मेरे आनंद की आप खान हो। वास्तव में श्रीमद् भागवतम क्या है, आनंद महाराज के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनके दिव्य कार्यकला और उनके गुणों से भरा हुआ दिव्य चरित्र है। वैसे सनातन गोस्वामी के जीवन से हम सीखते हैं, वो कहते हैं असाधु साधुता दाये, कि भागवतम क्या करता है, चाहे हमारे अंदर असाधु के गुण है लेकिन भागवतम का निरंतर हम आसंग करते हैं तो हमारे अंदर साधुता आ जाती है। भगवान के भक्तों के सारे दिव्य गुण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं और श्रीमद् भागवतम को अपना एकमात्र सखा, बंधु या मित्र या उद्धारक या आनंद का परम स्रोत के रूप में स्वीकारते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय दिया है। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में किसी चीज के लिए सबसे अधिक समय दिया है तो वो श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट करने में, उसका वितरण करने में या उसका प्रचार आदि करने में। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और श्रीमद् भागवतम को हमें क्या करना चाहिए, हम गंभीरता से रहना चाहिए। तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी पिछले पहले स्तर में आप सबने सुना है किस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप मिला और राजा परीक्षित ने कुछ सोचा नहीं। राजा परीक्षित गंगा के तट पर गए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, इसलिए कृष्ण की ओर जब आगे बढ़ेंगे हम तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि क्या मैंने छोड़ा, तो हमें आगे हमेशा चलते रहना चाहिए एक ही चीज की आकांक्षा करते हुए, योग साधु संगे हरि कथा। लालच ग्रीड हमारे अंदर जागृत करना चाहिए भगवान के भक्तों के संग के लिए और कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों को श्रवण करने के लिए, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित को जब उस ब्राह्मण बालक के द्वारा श्राप मिला तो उन्होंने क्या किया, गंगा के तट का आश्रय स्वीकार किया और उन्होंने कहा, गंगा के तट पर वो गए और उन्होंने कहा कि मुझे भय नहीं है, चाहे उड़ने वाला जो विस्मयकारी सर्प तक्षक क्यों ना हो वो आके मुझे डस ले, फिर भी मैं उससे भयभीत नहीं हूं क्योंकि मैंने क्या किया है, अपने जीवन में गंगा और भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण किया है। तो उन्होंने कहा गायतः कृष्ण गाथा, हे वैष्णव आप क्या करो, कृष्ण का गुणगान करो। तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी तब तक पहुंचे नहीं थे और इस ग्रेट महान इच्छा को लेकर परीक्षित महाराज का बैठे थे और परीक्षित महाराज के लिए कृष्ण की विशेष योजना है। क्या योजना है, अचानक कौन पहुंचते वहां, शुक्रदेव गोस्वामी। शुक्रदेव गोस्वामी को थोड़े किसी ने क्या आपका भागवत सप्ताह लग रहे हैं, आप थोड़ा डेट फिक्स कर लीजिए, अब सात परीक्षित महाराज अभी करने वाले हैं, उनको श्राप मिला है, आवाज है ये वहां नहीं, कृष्ण के विशेष अरेंजमेंट है। क्यों, हाँ परीक्षित महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है लेकिन वास्तव में कृष्ण इतने दयालु हैं, कृष्ण ने देखा कि शायद मेरा संबंध उनके महान भक्त पांडवों से है, केवल मेरा संबंध है पांडवों से, इसी कारण से मेरे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण किसको भेजते हैं, शुक्रदेव गोस्वामी को। तो केवल भगवान के जो भक्त है उनके हम शरणागत होते हैं, तो कृष्ण की जो कृपा है यश प्रसाद भगवत प्रसाद, कोई शॉर्टकट नहीं है भगवत भक्ति में, हम कुछ जम पाने का प्रयास करते हैं तो हमारे भक्ति में जीवन को हम डैमेज करते हैं, कुछ और नया कुछ नहीं करते, इसलिए शॉर्टकट क्या है, गोपीर भर्तृ पद कमलयोर दास दासान दास, गोपियों के जो भर्ता कृष्ण है उनके दासों के दासों का दास बनते हुए भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना यही एकमेव शॉर्टकट है कृष्ण भावना में, और कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी तो केवल क्या है, हाँ, श्रुति स्मृति पंचरात्रि के विधि बिना एकांतिकीर हरिर भक्तिर उत्पाद एवं कल्पते। बाकी कुछ हम अपने मनगढ़ंत ढंग से कुछ करना चाहते हैं तो एक तो दूसरों के जीवन में हम उत्पाद मचाएंगे और अपने भक्तिमय जीवन में क्या करेंगे, उत्पाद मचाएंगे। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने देखा कि शायद हाँ पांडवों के साथ संबंध है, पांडवों की कुछ सेवा की है, हाँ, तो इसलिए कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए शुकदेव गोस्वामी को भेजा है। और शुकदेव गोस्वामी आते हैं परीक्षित महाराज को बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है। वो कहते कि कितना बड़ा सौभाग्य है संस्मरणात्म कि ऐसे महान भक्तों का स्मरण करने से इतना लाभ है। तो आप सोचो उनका दर्शन करना, उनका स्पर्श करना, उनकी सेवा आदि करना, उसमें कितना लाभ होगा। ऐसे परीक्षित महाराज इतनी इतना शुक्रदेव गोस्वामी को गुणगान करते हुए आपकी शरण ग्रहण करते हैं और वो कई प्रश्न पूछते हैं। आप सबने वो प्रश्न सुने होंगे। शुक्रदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, आता पृछामि संसिद्धि योगिना परमं गुरु पुरुषस्यः यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वदा। जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके लिए क्या कार्य उचित है, कि मैं आपको पूछ रहा हूं उस व्यक्ति को यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो। जो मृत्यु के नजदीक है उस व्यक्ति को किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके नाम का जप करना चाहिए, उसके लिए क्या कर्तव्य है, और स्मर्तव्यम भजनीयम वा उसको किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं ब्रूहि यत्वा हाँ विपर्ययः, आप ये सब कुछ मुझे बताइए और इसके अलावा ये भी बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुक्रदेव गोस्वामी हाँ इस अध्याय की शुरुआत में ही हाँ पहले श्लोक में राजा परीक्षित का गुणगान करते हैं और वो कहते हैं वरी आदेश पे प्रश्न कृता लोक हितम प्रभा, कि आपका जो प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ है। हाँ श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सारे जीवों के हित के लिए है। तो ऐसे परीक्षित महाराज उनका गुणगान या ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं शुक्रदेव गोस्वामी। और इस श्लोक से वो चर्चा करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और बाद के श्लोकों में वो कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस श्लोक में शुक्रदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं एक भौतिकता वाले व्यक्ति का, जिसमें शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ श्रोतव्यादि राजेन्द्र प्रणाम शक्ति सहस्रशः, कि ये राजा परीक्षित जो भौतिकता वाले लोग हैं उनके पास सुनने के लिए कई सारे विषय हैं। हाँ कितने, एक दो विषय नहीं है, सहस्रशः सहस्र करोड़ों हजारों सुनने के लिए विषय हैं, जिनका वर्णन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक कितनी सारी भौतिक चीजें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो भौतिकता वाले व्यक्ति सुनने में उसमें लगा हुआ है। और दूसरा क्या है, और इसी कारण से अवश्यता आत्मतत्व ग्रहेशो ग्रहमेना, ऐसा व्यक्ति क्या हो गया है, अंधा हो गया है। और किस चीज में अंधा हो गया है, आत्मतत्व के बारे में आत्म तत्व का उसे ज्ञान नहीं है, और इसी कारण से वो केवल ग्रहेषु ग्रहमेदिना, वो केवल ग्रहमेदी बना हुआ है। मेधा का मतलब है बुद्धि और ग्रह का मतलब है घर। प्रभुपाद अपने इस तात्पर्य में दो चीजों का वर्णन करते हैं। और वास्तव में ग्रहमेदी वो है जिसकी दो इंद्रियां स्पिरिचुअली काम नहीं करती, एक क्या है कान और दूसरा आग, ये दो चीजें आध्यात्मिक रूप से काम नहीं करती, वो वास्तव में ग्रह मेदी है। भगवान से संबंधित कार्य में काम नहीं करती, लेकिन गृहस्थ के कार्य में क्या है, बहुत अधिक कार्यशील है या क्रियाशील है। इस प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी एक भौतिकता वाले व्यक्ति का वर्णन और इस श्लोक में तर्क में कहते हैं कि ऐसा ग्रह पहली जो व्यक्ति है वो अपने असली स्वार्थ को नहीं जानता। परीक्षित प्रहलाद महाराज ने कहा नमे विदु स्वार्थ गते भी विष्णु, कि मूर्ख लोग दिन रात भौतिक कार्यक्रमों में कार्यकलापों में मग्न हो गए हैं, वो अपने जीवन का जो असली स्वार्थ है उस पर नहीं जानते। और असली स्वार्थ क्या है? नमे विदु स्वार्थ गते भी विष्णु, विष्णु या भगवान को प्रसन्न करना, भगवत सेवा में नियुक्त होना, ये वास्तव में हर एक व्यक्ति का असली स्वार्थ है। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी हाँ कहते हैं कि ग्रह ग्रह में भी व्यक्ति वो है हाँ जो क्या हो चुका है हाँ, जिसने अपनी जो बुद्धि है केवल अपने घर में बना के रखी है। और घर में क्या है? शिष्योदर परायणा, अपना जो जनन इंद्रिय है और अपनी जो जीवा है इनकी संतुष्टि ही जिस व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया है वो ग्रह में ही है। कृष्ण नाही पाए, ऐसा व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। ग्रह में का मतलब जैसे बुद्धि, जिस व्यक्ति की बुद्धि केवल मेंढक के बाकी उसी में लगी है, मेंढक को जैसे प्रभुपाद ने कहा डॉक्टर मिस्टर फ्रॉग या डॉक्टर फ्रॉग या जो मेंढक है उसको बाहर का कुछ पता ही नहीं है हाँ, वो केवल अपने उसके कुएं में बना रहना चाहता है और उससे परे उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो ग्रह मेधी व्यक्ति है वो केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्य में मग्न है और जिसके कारण उसका जीवन ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। और दूसरा कौन व्यक्ति है? गृहस्थ, जो घर में स्थित है। किसके लिए स्थित है? गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए ये जो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा क्या है? संन्यास आश्रम। तो आता मतलब है अधिक और श्रम करना। किसके लिए अधिक श्रम करना? गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए। आत्म तत्व को जानने के लिए अधिक श्रम करना वो वास्तव में आश्रम है। और लेकिन उल्टा है, हम वहां निवास करके क्या करते हैं? इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए दिन रात हम मेहनत में लगे रहते हैं या मेहनत करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आइडियल उदाहरण इस श्लोक का हम देखते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के साथ ये दोनों चीजें हैं, सुनाई दे रहा है लेकिन फिर भी सुन नहीं रहा, दिखाई दे रहा है फिर भी दिख नहीं रहा है। तो ऐसे धृतराष्ट्र वास्तव में इस पक्के भौतिकता वाले के अच्छे उदाहरण है। तो ऐसे धृतराष्ट्र भौतिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी अंधे थे और स्पिरिचुअली भी क्या हो गए थे? अंधे थे और बहरे थे, दोनों चीजें थी। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से अंधा हो जाता है या फिर बहरा हो जाता है तो उसको कृष्ण का जो संदेश है वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि माया क्या करती है? वो हमें कैप्चर करती है आसक्ति के कारण। हाँ, तो जो भौतिकता वाली व्यक्ति है वो अपने इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, अपने देह आपत्र कलत्र आदिषु, अपनी पत्नी बच्चे, अपना धन, अपना देश, अपना गली मोहल्ला, अपने घर के साथ समान, उससे बहुत आसक्त हो गया है। और आसक्ति के कारण क्या है? व्यक्ति अंधा हो जाता है और दूसरा बहरा हो जाता है। ये दोनों लक्षण है आसक्ति के। आसक्ति के कारण व्यक्ति इतना अधिक अंधा हो जाता है, मैड हो जाता है, जिसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अवहृत चेतसां, कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो गया है उसकी चेतना भगवान में स्थिर नहीं होती, असंभव है उसकी चेतना को लगाना। इसलिए हम देखते हैं बिल मंगल ठाकुर एक वेश्या चिंतामणि के प्रति आसक्त हो गए थे। उनको वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी दोनों चीजें नहीं हो रही थी। इतने आसक्त हो गए थे चिंतामणि के प्रति कि घर में उनके पिता का श्राद्ध या फिर अंतिम संस्कार कुछ तो कार्य था, पत्नी चिल्ला रही है, रात को घनघोर वर्षा हो रही है, फिर भी बिल मंगल ठाकुर को घर का काम और अपनी पत्नी का जो रोदन है, रोना है, वो भी सुनाई नहीं दे रहा था। अपने पिता का श्राप या पिता का अंतिम संस्कार छोड़कर बिलमंगल क्या करते हैं, भागने लगते हैं मध्य रात्रि में घनघोर वर्षा के समय में, और बीच में एक नदी को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं? एक मृत शरीर को पकड़कर। हाँ, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, देख रहे थे फिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो क्या हो गए थे? पूर्ण रूपेण अंधे हो गए थे। और वो जाते हैं, हाँ, किसके लिए पागल हो गए थे? चिंतामणि के लिए। हाँ, और दरवाजे तो सारे बंद थे चिंतामणि के घर के। हाँ, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते हैं छत पर चढ़ने के लिए, और छत पर कोई रस्सी नहीं टांगी थी। हाँ, इतने सारे कठिन स्थिति में को पार करके ये जो बिल मंगल है वो जाते हैं चिंतामणि के सामने। चिंतामणि आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे बिल मंगल तुम कैसे आ गए इतनी घनघोर वर्षा में? तो उन्होंने कहा कि मैं देखा कि आपने तो मेरे लिए रस्सी टांग के रखी थी वहां छत से। उन्होंने कहा अरे वो रस्सी नहीं थी, वो क्या था? सांप था। तो इस प्रकार से व्यक्ति इस आसक्ति के कारण पूर्ण रूपेण अंधा हो जाता है। हाँ, और फिर पागल के बाद ही अपना जो जीवन है उसको गवाता है। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र हर समय देख रहे थे किस प्रकार से उनका जो पुत्र है पांडव के प्रति गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी इस आसक्ति के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते थे या कुछ कर नहीं पाते थे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम ये वर्णन करता है कि व्यक्ति जो भौतिकता वाले व्यक्ति है, भौतिक आसक्ति के कारण एक तो अंधा हो जाता है और दूसरा बहरा हो जाता है। इस चीज के लिए कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए, बाकी चीजें तो काम में तुरंत चली जाती हैं। कृष्ण का संदेश, भगवत सेवा, भक्तों की सेवा, ये सब चीजें कान में जल्दी एंटर नहीं करती। उस चीज के लिए हमारे कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी इसी चीज की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में जो भौतिकता वाले व्यक्ति हैं वो भौतिक कार्यकलापों में शून्य में मग्न हो गया है, भौतिक आसक्ति के कारण, और जिसके कारण वो अपना जो आत्म तत्व है, भगवत तत्व है, उसके प्रति क्या है, अंधा हो गया है। इसलिए श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में सबसे आखिरी लाइन लिखते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। कैसे असली गृहस्थ बना जा सकता है? जब हम क्या करेंगे, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेंगे और श्रीमद् भागवतम को हम श्रवण करेंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी तक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, एक साधक के लिए कृष्ण के बारे में निरंतर सुनना। क्योंकि आप जो सुनते हो वैसा आप अपना कैरेक्टर बनाते हो, चरित्र विकास करते हो। प्रहलाद महाराज ने अपने माँ के गर्भ में सुना दयालु के, बाहर आए तो कैसे, इनबिल्ट था उनके हृदय में भक्ति। तो जो आप सुन रहे हो वैसा ही आपके चरित्र का विकास होगा, जो आपने सुना वैसे आप बन जाओगे। इसलिए भक्त बनना है। हाँ, तो भगवान का जो गुणगान शुकदेव गोस्वामी के मुख से हुआ है श्रीमद् भागवतम, उसको सुनना चाहिए। क्योंकि कृष्ण के प्रति बहुत सरलता से हमें आसक्त होना है तो केवल हमें अपने कानों को कृष्ण कथा में नियुक्त करना चाहिए। हाँ, जैसे रुक्मिणी है, रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था। अब वो विदर्भराज विष्णु की कन्या थी, और लेकिन नारद हर समय ट्रैवल किया करते थे, तो नारद हमेशा राजा भीष्म के वहां जाते थे और अपडेट देते थे कि अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं मथुरा में, द्वारका में, वृंदावन में। तो जब वो जाते थे तो भीष्म को सुनाया करते थे कृष्ण के बारे में। तो छोटी सी ये युवती थी, ये आती थी और बैठ जाती थी अपने पिता के साथ और एकदम कृष्ण के बारे में सुना करती थी। तो ऐसा प्रगाढ़ आसक्ति श्रवण के द्वारा रुक्मिणी के हृदय में जागृत हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया,
और उन्होंने एक ब्राह्मण को एक लेटर देके भेजा द्वारका में। और वो ब्राह्मण जब द्वारका में पहुंचता है तो कृष्ण कहते कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे ये लेटर पढ़ के सुनाओ। प्रेम पत्र श्रीमद् भागवतम का जो फर्स्ट लव लेटर है, जिसमें पहले श्लोक में ही, पहले लाइन में ही जो रुक्मिणी है वो लिखती है, श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर श्रुण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम, कि हे कृष्णा, श्रुत्वा गुणान, जब आपके गुणों को कोई व्यक्ति सुनता है जो बहुत अधिक सुंदर है, श्रुण्वतांते निरंतर सुनता है, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम, कोई व्यक्ति कानों के माध्यम से आपके दिव्य कार्यकलापों को सुनता है तो उसके शरीर का सारा अंग ताप है, जीवन के सारे कष्ट आदि हैं, चाहे मानसिक है, शारीरिक है, सब प्रकार के कष्ट क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जो बेस्ट मेडिसिन है अंग ताप बुखार के लिए, कौन कहती है, हाँ रुक्मिणी कहती है, अंग ताप बुखार के लिए बेस्ट मेडिसिन है कृष्ण के कार्यकलापों को सुनना। रूपम दृशाम दृष्टम अखिल अर्थ लाभम त्वया चित्त विशति, हाँ चित्तम, वो कहती है कि आपका जो रूप है आंखों को कुछ देखने के लिए सर्वोत्कृष्ट चीज कोई है तो वो आपका स्वरूप है। आंखों के लिए सबसे अधिक लाभदायक वस्तु का दर्शन करना कुछ है तो आपका सुंदर श्यामल वर्ण है, श्यामल रूप है। और मैं क्या हो गई हूँ, अभी लज्जा को त्याग कर अपने चित्त को आप में लगा चुकी हूँ, ये चित्त अभी छूट नहीं रहा है। हाँ तो केवल रुक्मिणी का चित्त कृष्ण के बारे में सुनने से कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स हो जाता है। तो हम तो बहुत बड़ी योजना बनाते हैं, भक्ति रूपी महल बनने के लिए हम बैठे यहाँ कि भक्ति रूपी महल बनाना चाहता मैं अपने जीवन में, लेकिन हम एक चीज नहीं करना चाहते उस महल के लिए। अब महल का क्या है, बेस फाउंडेशन क्या है, श्रवण। तो जिस भक्त ने सरलता के साथ कपटता से रहित होकर श्रवण करना नहीं सीखा, वो भगवत भक्ति रूपी महल को खड़ा नहीं कर सकता। उसके लिए भगवत भक्ति तो केवल एक स्वप्नवत है। तो इसलिए सबसे सरल उपाय कुछ है कृष्ण के प्रति दिव्य आसक्ति को उदित करने के लिए, तो वो श्रवण करना है। भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्रभुपाद इलाहाबाद में थे, जिनका नाम अभय था, तो वो बाकी सब चीजों के लिए गुणगान नहीं करते थे कि ये अभय बाबू बहुत दान देता है, बहुत सेवाएं करता है। भक्ति सिद्धांत महाराज को जब अभय या प्रभुपाद को दीक्षा के लिए रिकमेंड किया तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, मैं इसको जानता हूँ, हाँ इसको क्या अच्छा लगता है, सबसे श्रवण करना। प्रभुपाद ने कहा, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या किया है, श्रवण किया है। इसलिए वास्तव में कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश होते हैं, हाँ कर्ण विवरे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कानों के द्वारा हमारे चित्त में जाते हैं, श्रवण के माध्यम से कृष्ण प्रवेश करते हैं। और कैसे सुनना चाहिए, हमें अटेंटिव हियरिंग होना चाहिए, बहुत गंभीरता से अटेंटिव हमें श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रसिकानंद प्रभु के जीवन में वर्णन आता है, श्यामानंद प्रभु के जो शिष्य है रसिकानंद प्रभु, तो ऐसे रसिकानंद प्रभु एक राजा के दरबार में श्रीमद् भागवतम में मॉर्निंग लेक्चर दे रहे थे। वो राजा अपने मंत्रियों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ ध्यान पूर्वक सुन रहा था, और जैसे वो सुन रहा था उसी समय राजा का जो मैनेजर है रामकृष्ण, वो आता है और वो रसिकानंद प्रभु का शिष्य है, वो आता है रामकृष्ण और राजा के पास जस्ट आके खड़ा हो जाता है, और रसिकानंद के द्वारा श्रीमद् भागवतम को सुनते जा रहा था। तो राजा क्या करता है, वो आके खड़ा हुआ, बोलना शुरू नहीं किया, राजा ने अपना गर्दन हिलाया, ध्यान हटा दिया कृष्ण कथा से और अपने मैनेजर की ओर मुड़ा। तो मैनेजर जो इतना पक्का कृष्ण भक्त था और श्रीमद् भागवतम या कृष्ण कथा और श्रवण की ग्लोरी से अवगत था, तो जैसे राजा ने अपना फेस उस तरफ किया, रामकृष्ण ने क्या किया, मैनेजर ने राजा के एक मुंह में जोर से थप्पड़ लगा दी, और इतनी बड़ी, इतनी भया, इतनी जोर से वो थप्पड़ था कि राजा उसी क्षण भागवतम क्लास में मूर्छित होकर गिर पड़ा, भागवतम क्लास रुक गया कुछ समय के लिए। तो फिर राजा के जो बाकी मंत्री थे, सब लोग थे, वो क्या करने लगे, मैनेजर ये जो राम कृष्ण है उसको मारने के लिए दौड़े। हाँ, तो भगवान की कृपा से राजा तुरंत अपनी चेतना में वापस आ जाता है, मूर्छा से बाहर आ जाता है और फिर वो रोकता है सबको। और राम कृष्ण की ओर देखकर, उनका जो मैनेजर था उसकी ओर देखकर कहता है कि वास्तव में मैं महापापी हूं, मुझे उचित दंड मिला है। हाँ, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है। मैं इतना अधिक महापापी हूं कि कृष्ण ये कथा अमृत है, अमृत के समान ये वर्षा हो रहा है, अमृत का पीना छोड़कर मैं क्या पी रहा हूं, जानिया सुनिया विष खाई हूं। मैंने अपनी गर्दन मोड़ ली विष रूपी विषयों को सुनने के लिए, भौतिक विषयों को सुनने के लिए। हम मेरे कान आपने उस तरफ कर दिए। तो उन्होंने कहा कि जो जो बाकी, राजा बोलने लगा कि कृष्ण के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो वास्तव में विष के समान है। हाँ, अब उस विष को हम अपने कान रूपी प्यालों में क्या कर रहे हैं, भर भर के पी रहे हैं। और ऐसे विष का पान करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन समूल नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे रामकृष्ण जो उनके मैनेजर थे, तो राजा ने कहा कि वास्तव में वो व्यक्ति जो कृष्ण कथा के अलावा बाकी विषयों में रममान होता है, वो व्यक्ति एक सुअर और कुत्ते के भांति है। क्योंकि सुअर और कुत्ता हर समय गंदी चीजों को खाने में क्या रहता है, लालायक रहता है, उसी आटे को बार बार चबाएगा। सुअर हमेशा उसी मल में गिरेगा, उसी मल को खाते रहेगा। तो कृष्ण कथा के अलावा हाँ बाकी जो विषय है, चाहे वो राजनीतिक है हाँ या सामाजिक है, हाँ टेलीविजन के कितने हजारों सब्जेक्ट्स हैं, क्रिकेट है, फिल्म स्टार से संबंधित है, तो ये सब सब्जेक्ट मैटर विष के समान है, हाँ गंदगी के समान है। तो राजा वो कहते हैं कि इन विषयों के प्रति सुनने के लालसा को रखना मीन्स कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जान बुझ के विष पी रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है तत्वायसं तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निरवंति उशिक्षया, कि जो कौवे हैं वो हमेशा किसमें आनंद लेते हैं, कूड़ा कचरे का जो ढेर है उसमें जाकर आनंद लेते हैं, उसी में कुछ अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं। अभी कूड़े कचरे के ढेर में क्या अच्छा मिलेगा, लेकिन जो हंस जैसे भक्त है वो सदैव क्या करते हैं, कृष्ण नाम रूप गुण और लीला में अपने मन रूपी हंस को डुबा देते हैं। इस प्रकार से हमें ये सीखना चाहिए। तो फिर वो राजा ने क्या किया, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, किसका हाथ पकड़ा, उस मैनेजर रामकृष्ण का, और उन्होंने कहा कि वास्तव में आपके हाथ को कष्ट पहुंचा होगा, दर्द हो रहा होगा आपके हाथ में, आपने आज मेरी रक्षा की है। ये भावना किसके अंदर थी, उस राजा के अंदर। इस प्रकार से वास्तव में इस योग्यता को, इस एटीट्यूड को, इस मूड को अपने हृदय में धारण करके हमें श्रीमद् भागवतम के प्रति अटेंटिव होना चाहिए। इवन कृष्ण अपनी कथा को सुनने के लिए अटेंटिव है। हाँ, आपने सुना होगा कृष्ण जब छोटे से बालक थे, मदर यशोदा उनको हमेशा रात को कृष्ण कथा सुना के सुलाती थी। किसको, कृष्ण को। तो कृष्ण जब सो रहे थे, मदर यशोदा ने जो रजाई डाला तो कृष्ण माँ के मुख को देख रहे थे, और यशोदा माता कहने लगी, उन्होंने कहा एक समय एक राजा थे अयोध्या में जिनका नाम क्या था, दशरथ। तो पूरा रामायण का कथा चल रहा था। तो जब वहां तक पहुंचे कि कुछ कारणवश राम और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा और सीता का अपहरण हुआ, ये वर्ड ये शब्द जैसे ही यशोदा माता ने बोले कि उस समय सीता का अपहरण हुआ, तो कृष्ण करके हमें लेटे हुए थे, थोड़ा सा हाफ रजे उड़ा था, छोटे से बालक है, और उठ के खड़े हो जाते हैं इमिजिएटली सुनकर, और वो चिल्लाते हैं सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर, कहते कि हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। मतलब कृष्ण कथा में क्या हो गए हैं, घुस गए हैं। हाँ, इसको कहते हैं अटेंशन। हाँ, तो इस प्रकार से एक भक्त जब हम प्रयास करते हैं कृष्ण को सीरियसली लेना, मीन्स कृष्ण के कार्यकलापों को सीरियसली लेना, कृष्ण नाम कृष्ण सेवा आदि को गंभीरता से लेना, कृष्ण कथा आदि को, तो इसको हम जब सीरियसली लेते हैं तो कृष्ण हमें सीरियसली लेंगे। अन्यथा कृष्ण हमें सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए ये परम आवश्यक है कि श्रीमद् भागवतम जो आपका शुक्रदेव गोस्वामी के द्वारा हमें प्रदान हो रहा है श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, हमें उसके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, अचिंत्य होना चाहिए। और कोई व्यक्ति निरंतर बिना किसी रुकावट के कृष्ण कथा को सुनते रहता है तो नेचुरली तीन चीजें उसके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग उसके हृदय में फिक्स हो जाती है कि कृष्ण क्या है, सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानां। मेरे कोई असली वेलविशर, कोई हितेशी है तो वो कौन है, कृष्ण है। ये श्रवण का पहला इफेक्ट है, ये इस भावना को हमारे हृदय में फिक्स हो जाता है। और कृष्ण के अलावा हम किसी और शेल्टर का शेल्टर के बारे में नहीं सोचते। अवश्य रक्षिते कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे और वही मेरा पालन करने वाले हैं, शरणागति। ये भावना। और दूसरा क्या है कि जब हम निरंतर कृष्ण कथा को हमेशा श्रवण के लिए उत्साहित रहते हैं, सुनते हैं बिना किसी कपटता के, कपटता का मतलब है कि दिखावा कि हाँ मैं श्रवण कर रहा हूँ, नहीं तो पूछेंगे आजकल आप भागवत क्लास में नहीं आते प्रभु जी, या फिर कई और रीजन हो सकते हैं। तो फिर जब हम श्रवण करते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति सुहृद कृष्णा है, कृष्ण असली वेलविशर है, ये भावना की स्थापना हो जाती है। और दूसरा क्या है कि हमारे जीवन में कृष्ण के लिए प्रायोरिटी, हमारा जीवन में सबसे पहले प्राधान्यता किसके लिए होती है, कृष्ण के लिए। जिस प्रकार से पांडवों के जीवन में सबसे पहले प्रायोरिटी किसके लिए है, तो वो कृष्ण के लिए है पांडवों के लाइफ में। तो उसी प्रकार से निरंतर श्रवण करने से हमारे जीवन में प्राधान्यता आ जाती है कि प्रायोरिटी किसके लिए आ जाती है लाइफ में, कृष्ण के लिए, कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण नाम आदि के लिए। और तीसरी चीज क्या है कि हमेशा हमें कृष्ण का स्मरण बना रहता है और सदैव भगवत भक्ति में हम उत्साहित बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, उत्साहित। तो हम उत्साहित नहीं है इसका मतलब क्या है कि हम श्रवण कीर्तन चले करे सेचन, ये जो भक्ति रूपी जो लता या बीज गुरु से हमें प्राप्त हुआ है उसको हम श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचित नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें उत्साह भक्ति में नहीं है, सेवाओं में उत्साह नहीं है, प्रचार के कार्य में उत्साह नहीं है। तो इसलिए इस उत्साह और कृष्ण स्मरण को निरंतर बने रखना है तो हमें श्रवण को प्राधान्य देना होगा। और परीक्षित महाराज के जीवन से हम देखते हैं यशा भय श्रेय मानाया, हम जब इसको सुनते हैं शोक मोह भया भा, जीवन के सारे शोक मोह आदि हैं वो खत्म हो जाते हैं और कृष्ण हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी अभी अभी बोलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बोली है कुछ लोगों में बहुत क्या है, पावरफुल है, हृदय को लगने वाला है, काटने वाला है। तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं और वही अपॉर्चुनिटी श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें मिली है। इसलिए हमें जब भी अपॉर्चुनिटी या मौका मिलता है हमें सदैव श्रीमद् भागवतम की सेवन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और दूसरों को भी हमें इंस्पायर करना चाहिए। हरे कृष्णा।